श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 श्लोक अध्याय 26 श्लोक नंबर 14। प्रसंग चल रहा है राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रोध होना। अंतःपुर स्त्रिय प्रोच्छाम विमुना इव विदिशात् अपि च कुशल रामा शेषोरेणाम यथापुरः अन्तःपुर स्त्रियं प्रोच्छाम विमुना इव विदिशात् अपि व कुशलं रामा शिशोरेणं यथा पुरः अन्तःपुर स्त्रिय पृच्छाम दिमना इव वेदिशात् अपि व कुशलं राम शिशोरेणं यथा पुरः। शब्दार्थ अन्तःपुर रानी वास की स्त्रिय स्त्रियों से अपृच्छम पूछा विमाना अत्यंत उत्सुक होकर इव मानव विदिशत हे राजा प्राचीन वही अपि क्या ब तुम्हारी कुशलम कुशल मंगल रामहा हे सुंदरियों स ईश्वरीणाम अपनी मालकिन या सामिन सहित जथा जिस तरह पूरा पहले। अनुवाद उस समय राजा पुरंजन कुछ कुछ उत्सुक हुआ और उसने रानीवास के स्त्रियों से पूछा हे सुंदरियों तुम सब अपनी सामिन सहित पहले के समान संपन्न हो तो हो। कृपया दोहराइए उस समय राजा पुरंजन कुछ कुछ उत्सुक हुआ और उसने रानीवास स्त्रियों से पूछा हे सुंदरियों तुम सब अपनी सामने सहित पहले के समान प्रसन्न हो तो हो। तात्पर्य इस श्लोक में वेदिशत शब्द राजा प्राचीन भाई का सूचक है। जब मनुष्य भक्त के संगीत में आकर अपनी की नवीनता पाता है और उसमें कृष्ण भक्ति जगती है तो वह अपनी मनोरथ से सलाह लेता है अर्थात सोचता है अनुभव करता है तथा चाहता है और यह निश्चय करता है कि वह भौतिक कार्य में लौट जाए और आध्यात्मिक चेतना में आडिंग रहे। कुशलम शब्द से जो कुछ हो उसका सूचक है। यदि मनुष्य भगवान विष्णु की भक्ति में लग जाए तो अपने घर को पूर्णतः शोभ बना सकता है। जब कोई विष्णु भक्ति में अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में लगता है अर्थात भौतिक कार्य में लगता है तो वह सदैव चिंताओं से ग्रस्त रहता है। विचारवान व्यक्ति को चाहिए कि अपनी मन से सहला ले और तय करे कि मन की इन प्रवृत्तियों का किस तरह उपयोग किया जाए। यदि कोई मनुष्य श्री कृष्ण के विषय में निरंतर सोचता है उनकी सेवा करने का विचार करता है और उनकी आज्ञा पालन करने की कामना करता है तो वह समझना चाहिए कि उसने अपनी बुद्धि को अच्छी शिक्षा प्राप्त की है क्योंकि बुद्धि तो माता है। यद्यपि राजा विभ्रांत हो चुका था फिर भी उसने अपनी पत्नी से व पत्नी के विषय में से पूछा। इस तरह वह सलाह ले रहा था सोच रहा था और चाह रहा था कि वह अपनी स्थिर उत्तम चेतना की ओर फिर से लौट आए। मन सलाह दे सकता है कि विषय भोग से मनुष्य प्रसन्न रह सकता है किंतु जब वह कृष्ण चेतना में आगे बढ़ जाता है तो भौतिक कार्य से उसे सुख नहीं मिलता। उसकी व्याख्या भगवद गीता में 2:59 में की गई है। विषया निवर्तन्ते विषया निवर्तन्ते निरारस दैनम रसवर्जम रसपच्चम परम दृष्टा निवर्तन्ते। देहधारी जीव को इंद्रिय भोग के से रोका जा सकता है परंतु विषय शक्ति बनी रहती है, किंतु उच्च रस अनुभव द्वारा ऐसे व्यापार से त्याग कर वह चेतना या बुद्धि युग में स्थिर रहता है। जब तक मनुष्य अपनी भक्ति में श्रेष्ठ व्यापार में न लगा वह इंद्रिय विषय में विरक्त नहीं हो सकता है। परम दृष्टा निवर्तन्ते कई तभी भौतिक कार्य को छोड़ सकता है जब वह सचमुच भक्ति करने में लग जाए। अम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्रुर मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूप कदा मध्यं ददाति सपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीजुत पद कमलं श्री गुरुन वैष्णवांश श्रीरूपं साग्र जातं सगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखनितं च नमं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिण निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिण वंशाकल्पतरु वत्स कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेव वैष्णवेव नमो नमः। नमो महावद्यानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्मातकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहदितौ गौड़ोदय पुष्पवंतौ चित्रसंदौ तमनुदौ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम हरे नामेव केवलम् कुलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। प्रातःकालीन भगवत कक्ष में आप सभी की हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं नमन। ये जो प्रसंग बहुत लंबी समय से चली आ रहा है तो यहाँ जो रूपक प्रस्तुत किए हैं नारद मुनि ये रूपक माध्यम से हमको ये समझाने में उन्होंने समर्थ बा हम भी समझ सकते हैं कि ये रूपक का प्रस्तुत करने का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर पुरंजन आखेट के लिए जाना और रानी का कुछ क्रोध होना, इसे क्रोध होने का बात किया है। अभी राजा आखेट करने गए हैं, रानी राजमहल में है, तो इसमें क्रोध होने का कारण क्या है। इसमें प्रभुपाद दूसरा अध्याय का 59 नंबर श्लोक का उद्धृत किए हैं कि विषया भी निवर्तन्ते निराहरस्य देहिनम रसवर्जम रसपश्यम परम दृष्टा निवर्तन्ते। तो जब तक ये भौतिक जगत में ये भौतिक रस से हम रचे पचे हैं तब तक हम आध्यात्मिक उन्नति व आध्यात्मिक रस का कई संधान को भी हम नहीं पा सकते हैं। भगवद गीता में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं किसी नवाधिकृत भक्त के लिए ये जो विधि निषेध जो सत्य युग का जो जो भगवान को जो प्राप्त करने का माध्यम है जम नियम आसन ध्यान धारणा समाधि, इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि ये नवाधिकृत भक्त के लिए। और जो महत्वपूर्ण बात है निराहारस्य देहिनः, ये देहाधारी के लिए है, ये निराहार रहना क्या है, उपवास करना ना भूख प्यास में तड़पना, ये बात नहीं है। उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि ये इंद्रियों को संयमित करना है। कैसे किया जाए, जैसे प्रभुपाद उसमें उल्लेख करते हैं कई बीमारी बार जिसको रोग में वो पीड़ित है उन्हें चाहते नहीं कि जो पथ्य को, लेकिन डॉक्टर उनको बता देते हैं कि ये चीज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अभी उनका मूलभूत जो खाने का प्रवृत्ति नष्ट नहीं है। तो यहां रानी का क्रोध होना क्यों, कि राजा राजमहल रहे और उनका अंग संग मीठे मीठे बात करे व उनका संग सुख लाभ के लिए ही ये उन्होंने उत्सुक थे। तो आज राजा आकेट के लिए जंगल में गए, अब सुने हैं कि राजाओं का एक छुटकारा दिया जाता है शास्त्र में, क्योंकि उनको कुछ शिक्षित होने के लिए बस शिकार खेलने के लिए जाते हैं। लेकिन आज का जमाना में लगभग इसका साहित्य नियम का बंद हो चुका है, क्योंकि कोई भी आखेट में करने के जाए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको रोक सकता है और आज जेल में भी डाल सकता है, क्योंकि वैदिक जो नीति नियम को धीरे धीरे ये जो असभ्य सभ्यता उसको आरव लिप्त करने का प्रयास में है। लेकिन यहां पर जो प्रभुपाद दूसरा अध्याय के जो श्लोक में बताए कि जब तक हम उच्चतर रस का जब रस आसादन नहीं करते हैं तब तक हम क्या करेंगे ना, ये विषय भोग में ही लिप्त रहेंगे। इसीलिए विषय बोलने से क्या समझते हैं हम लोग, ऐसे तो कई बार हम सुने विषय न खाइले मड़ी न है मन, मड़ी न मन न है कि स्मरण बा भजन। तो हम जितना भी ये मंदिर में धन संपद आता है सभी हम लोग ईमानदार से कमाते हैं ना, जिन लोग दान करते हैं वो लोग ईमानदार से कमा के देते हैं, लगभग 99% तो धोखेदार का काम ही होता है, क्योंकि इंसान को ये पता चलता है कि शास्त्र अध्ययन से भी उनको मालूम होता है, क्या साधु संत से भी सुनते हैं कि कुछ दान कर देने से पाप का भाग कम होता है। हाँ ये कह सकते हैं कि इसमें एक विशेष बात है कि जब हम उसको कृष्ण का संबंध में जोड़ देते हैं वो दिव्य होता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वैष्णव के वैष्णव कौन है उसमें लिखते हैं किसने रा संबंध नहीं माया गंध। जब कृष्ण का साथ हम प्रत्येक वस्तु को जोड़ देते हैं तो वो माया का गंध नहीं रहता, अब विषय नहीं होता है उसको, वो विषय कहले बोलने से क्या होगा ना भूल होगा गलती हो जाएगा। कृष्ण रा संबंध नहीं माया गंध, तो माया गंध नहीं है तो वहां हम उच्च रस आसादन क्यों नहीं कर सकते। इतना तक कि भक्ति रसामृत सिंधु में हम कृष्ण भावनामृत में योगदान किए और कृष्ण भावनामृत का जो विधि विधान को भी अनुसरण कर रहा है, जैसे नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदन दासम सख्य आत्म निवेदन। इधर नवदा भक्ति को हम आचरण करते हैं बहुत लंबे समय थे, लेकिन हमारे विषय का क्यों हमारे नहीं छूट रहा है, विषय वासना किसे हम निवृत्त नहीं हो रहा है। तो इससे है हमको पता चलता है कि हम अनुभव कर सकते हैं कि हमको उच्च रस आस्वादन अभी तक नहीं मिला, क्योंकि उसका उदाहरण स्वरूप दिया जाता है, जैसे नारियल कच्चा रहता है जिसको डाब कहा जाता है, उसका बाद जब पक जाता है, ये सूख जाने का बाद नारियल ऊपर तो छिलका भी सूख जाता है, नारियल अंदर का भी उसका जो गिरी है वो सूख जाता है। अब वो कई बार देखेंगे सूखला जो सूखा हुआ नारियल आप हिलाएंगे देखेंगे तो उसमें एक आवाज आता है, क्योंकि वो इसी अवस्था में पहुंच चुका है कि वो वस्तु से अलग हो चुका है। तो हम नवदा भक्ति को आचरण करने से हमारा प्रमाण किया है ना, जब तक हम विषय से जुड़े हुए हैं लेकिन कृष्ण भावना मृत में उन्नत रस का आस्वादन नहीं हो रहा है, मतलब क्या है ना, हमारे अभी तक विषय भोगने का एवं विषय का साथ जो लगाव है उसको अभी तक हम आरव उच्च रस का साथ जुड़ा नहीं। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए ना, यहां पर बताए कि जब तक मनुष्य भक्त के संगीत आकर अपनी को नवनीतता है और उसमें सुस्तता है अनुभव करता है तो चाहता है। अब दो तीन दिन पहले एक श्लोक में आप सुने हैं जो एक भक्त दूसरे भक्त से जब मिलते हैं तो विषय चर्चा नहीं करते हैं, क्या होता है भक्त का अंदर ना, बुधयंत परस्परम, अपना जब बुध हुआ वा अनुभव हुआ उसी बात को उन्होंने प्रकाश करते हैं, ददाति प्रतिज्ञाति ख्याति मा गृह पूछती, उसमें जो गोपनीय बात है जो आप अनुभव किया है उसको आप प्रकाश करते हैं। और जो कोई विषय ये दूसरा विषय से मिलता है उन्हें अपना ये जगत का सारे झंझट अपना मित्र से खुलास कर देते हैं, क्योंकि कुछ हल्का हो जाए। लेकिन एक शुद्ध भक्त से जो मिलते हैं बुधयंता परस्परम एव तुषंति च रमंति च, किसका बारे में ना, भगवान का बारे में, कई भक्त का बारे में। जब तक हम शुद्ध भक्त का संगति में बा भक्त का संगीत में नहीं रह रहा है बा भक्त का संगति कैसे करना है, उसमें उदाहरण दिया जाता है कि कपड़ी देव देवती को उपदेश देते हैं, एक माता पुत्र का संबंध है लेकिन भगवान अपना भौतिक संबंध को तोड़ के एक आचार्य का पद निभाए और माता को उन्होंने उपदेश देते हैं। शतांग प्रसंगा मम बिरिज संविद भवंती हृदय रसायन कथा तजुषणा बात अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा भक्ति रति क्रमुने सती। जब बिरजवती हरि कथा कई वरिष्ठ भक्त से जब हम सुनते हैं तब क्या होता है ना, हमारे जो श्रद्धा एवं भक्ति एवं रति एक क्रम से क्या होता है ना, उन्नति करता है। इसलिए महान आचार्य ने इसका प्रमाण क्या दिए हैं, जब भगवान का बिरजवती हरि कथा सुनने से हमारे श्रद्धा और भक्ति रति ये उन्नति हो जाएगा, अक्रम से वर्धित होगा। तब इसका प्रमाण क्या है, भगवान का जब नाम हम कीर्तन करते हैं, जैसे हम सुबह मंगल आरती में जो दूसरा गुरुवाष्टक में हम पढ़ते हैं कि रोमांच कंपास तरंग भाज, इसमें दूसरा को पूछने का कोई जरूर नहीं है कि हमारे भक्ति में उन्नति हुआ क्या नहीं, कि हम बताइए। यदि हमको भगवान का कीर्तन में एवं भगवान का दिव्य गुणावली सुनते हैं एवं भक्त का संग में जो रमंतित व परस्पर हम उसको चर्चा करते हैं, उसमें हमारे शरीर में अष्ट सात्विक विकार हो रहा है क्या, तब पता चलेगा कि हम सही में हम ये निकृष्ट रस को हम छोड़ चुके हैं एवं उच्चतर रस को हम आस्वादन करते हैं। उसका प्रमाण क्या है, नामे रचि हैले प्रेमेरा उदय प्रेमेते हरिते भाई,
ये भगवान का भक्त का संघ का प्रभाव क्या है ना, बा भगवत कथा बा भगवत चर्चा में हम जब दिन व्यतीत करते हैं तो वो ये पता चलता है कि हम नाम में हमारे आसक्ति है। उसका भक्ति रसामृत सिंधु में उल्लेख कर रहा है कि नामो गाने सदा रुचि, उसका ये लक्षण है। कभी भी भक्त विषय ही का जैसे भी वो कभी कभी व्यवहार करते हैं, क्योंकि ये जब विषय अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। उसका प्रमाण देखिए, रंगनाथ जी का जो मंदिर है, विशाल मंदिर है, रामानुजाचार्य ने अपना शिष्य वर्ग से वो तैयारी किया। उन्हें कोई साधु महात्मा नहीं थे पहले, उनका एक स्वभाव दूसरा टाइप का था, लेकिन ये आचार्य का इतना क्षमता होता है कि ये बौद्ध जीव को कैसे परिचालना करना है। इसलिए यहां पर नारद मुनि प्राचीन वैष्णव को पहले तो एक कर्मकांडी सकाम कर्म से निवृत्त करने के लिए उन्हें चाहे, लेकिन उन्हें देखे कि राजा इतना आसक्त तो हो चुके हैं, ये आसानी नहीं है, क्योंकि उनका युग मार्ग से जो बौद्ध के पशु को उन्होंने दर्शन भी कराए। जैसे परम पूज्य गौरनारायण महाराज बता रहे थे कि मांस शब्द का मां मतलब मुझको आप स मतलब तुम फिर अगले जन्म में भक्षण करोगे, लेकिन राजा इतना व्यस्त थे एक कर्म कांड में कि उन्होंने निवृत्त होना आसानी नहीं था। इसीलिए नारद मुनि ये भगवान का शुद्ध भक्त है, इसीलिए उन्होंने ये बद्ध जीव को कैसे ये सकाम कर्म से निवृत्त करने के लिए ये रूपक प्रस्तुत किया, क्योंकि एक आध्यात्मिक आचार्य का एक कर्तव्य होता है। जैसे अभी मैं बता रहा था कि रामानुजाचार्य का बात है, उनका जितना भी शिष्य थे उनका पास ऐसे ऐसे गुण था कि इस चमत्कार था कि ताला लगा हुआ है कि वो जैसे एटीएम में कार्ड नहीं है उनका पास लेकिन पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन आचार्य का ये रूपक प्रस्तुत करने का मतलब क्या है, बा उसको सेवा में लगाने का एक क्षमता देखिए, उनका माध्यम से ये धन को संग्रह किए। ये साधारण व्यक्ति का सामने है ये आसानी नहीं है, क्योंकि ये भौतिक जगत में लगभग धन दौलत में जो मद हो जाता है व्यक्ति क्या करता है, उसमें भागवत में वर्णन है कि 15 अवगुण उसका आता है, पहले झूठ बोलेगा। लेकिन आचार्य लोग अपना धन संबंध कैसे उपयोग किए, इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोला किया ना, किसने रे संबंध नहीं माया गंध। जब हम भौतिक वस्तु को भगवान का संबंध में जुड़ देते हैं तो उसका माया गंध नहीं रहता। उसका उदाहरण प्रभुपाद और बताते हैं, जैसे है बिजली, सोई बुज में सब कनेक्शन है, पीले नीले सफेद और भी काले रंग का और बल्ब लगा हुआ है, लेकिन जब वो बटन हम दबा देते हैं तब सब बिजली जलते रहता, क्योंकि सब बराबर उज्ज्वलता प्रदान करते हैं, लेकिन उनका स्वभाव अलग अलग रहता है, काला कलर का पीला कलर का, लेकिन वो तो बिजली तो प्रदान करता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर एक भजन में बताते हैं कि गुरा पहु ना भोजिया मोइन, गुरा पहु ना भोजिया मोइन। ये सुंदर भाव में उन्होंने बताया गोरापों व चैतन्य महाप्रभु में भजन किया नहीं, अधने जतन करे धन तिहागिनु, अधने जतन करे धन तिहागिनु, गौरा कीर्तन रसे गौरा कीर्तन रसे मगन ना हैनु ना भजिया मैनु, गोरा पहु ना भजिया मैनु। बता दे मैं ए गोरा पहु को बा चैतन्य महाप्रभु को भजन किया नहीं, और किससे मैं प्यार किया, किससे आज रानी क्यों रुट गए, ना अधन को उन्होंने जतन किए उसी लालसा से, अधन जतन कर धन त्यागन। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को जो भजन नहीं किया, क्या हुआ ना, ना भजिया मैनू, ये जिंदा रहते हुए भी मृत्यु सदृश है। यदि कोई सब को अभी राम नाम सत्य हो चुका है, उनका शरीर में हम हीरा लीला मोती मान के देके मुंडा देते हैं, उसमें कोई फायदा थोड़ी होता है। सतसंग छाड़ी कहनु असत्य विलास, ते कारण लागिल जे, ते कारण लागिल जे कर्म बंद फास, ना भजिया मैनु गोरा पहो, ना भजिया मैनु सतसंग छाड़ी कहनु असत्य विलास। बोलिए सतसंग छाड़ी कहनु असत्य विलास, ते कारण लागिल जे, ते कारण लागिल जे कर्म बंद फास, ना भजिया मैनु गोरा पहो, ना भजिया मैनु। अधने जता न करे धन त्यागिनु, अधने जता न करे देह त्यागिनु, अपन करम दोषे, अपन करम दोषे अपने डूबिनु, ना भजिया मैनु पूरा पो, ना भजिया मैनु सतसंग छाड़ी कहनु असत्य विलास, सतसंग छाड़ी कहनु असत्य विलास, ते कारण लागिल जे, ते कारण लागिल जे कर्म बंद फाता, ना भजिया मैनु गोरा पहो, ना भजिया मैनु विषय विषम विष सतत खाइनु, विषय विषम विष सतत खाइनु, गौर कीर्तन रसे, गौर कीर्तन रसे मगन ना होइनु, ना भजिया मैनु गोरा पहो, ना भजिया मैनु ए मन गौरांगर गुने ना कांदिल मन, ए मन गौरांगर गुने ना कांदिल मन, मनुष दुर्लभ जन्म, मनुष दुर्लभ जन्म गेलो कारण, ना भजिया मैनु गोरा पहो, ना भजिया मैनु खेन बाछ ए प्राण कि सुख पाइया, केन बाछ ए प्राण कि सुख पाइया, नरुतम दास केन, नरुतम दास केन ना गेल मरिया, ना भजिया मैनु गोरा पहो, ना भजिया मैनु प्रेम रतन धन, प्रेम रतन धन हेलाय हराइनु, ना भजिया मैनु। नरोत्तम ठाकुर उन्हें कोई विषय नहीं थे, भगवान का शुद्ध भक्त थे, लेकिन हमारे कल्याण के लिए हमारे ये भौतिक विषय से ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए उन्होंने भजन प्रस्तुत किए कि गोरा पहु ना भजिया मन। ये चैतन्य महाप्रभु का पाद पद्म में भजन नहीं किया इसलिए क्या मैनू मतलब मर गया। प्रेम रतन धन हेलाय हरेनु, जो प्रेम पुमार्थ महान धर्म अर्थ काम मुख्य चतुर्वर्ग है चार पुरुषार्थ है उसको छोड़ के चैतन्य महाप्रभु जो पंचम पुरुषार्थ को सिद्ध किए हैं उसको क्या बता रहा है कि प्रेम रतन धन हेलाय हरेनु, अपन कर्म अधन रे जतन करी धन त्यागिन। ये शोक कारण क्या है, हम जो धन को नित्य धन जो भगवान का हरिनाम संकीर्तन एवं उनका रूप लीला गुण एवं धाम व परिकर इसको अपनाना चाहिए, लेकिन हम क्या क्या बद्धता बस अधने जतन करी धन त्यागिन। ये अधन से जतन करके हम धन को त्याग दिया, इसका कारण क्या हुआ, अपन कर्म दोषे अपने डूबे। हम बता देंगे वो एक कर दिया, वो हमको पॉलिटिक्स कर दिया, वो हमको कुछ बाधा डाल दिया, लेकिन ये कहने का भूल है। यह नरोत्तम दास ठाकुर बता रहा है कि अपना कर्म दूसरे अपने डूबे। सत्संग छाड़ी कहनु असत्य विलास, सत्संग क्या है और असत्संग, असत्संगे सर्वनाथ संग सत्संगे स्वर्गवाद वैकुंठवाद। ते कारण लागिला जे कर्म बंधवाद, हम सत्संग छोड़ के ये असत संग किया इसलिए हमको ये कर्म बंधन बांध दिया। लेकिन ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कर्माणि निर्दहाति किंचु च भक्ति भाजाम, ये हमारे जो अकर्म है ये असत संग से जो उपज हुआ है व उत्पन्न हुआ है, हम जब भक्ति करेंगे तब क्या होगा ना, ये कर्म बंधन का नाश हो जाएगा। इसलिए भागवतम में दूसरा स्कंद में बताया कि अकाम सर्व काम मुख्य काम उदार अधि तीव्रण भक्ति जोगे ने जजते पुरुष पर। हम अकाम हो कोई कामना विहीन हो कि वह अकाम सर्व काम सभी कामना लेकर, जैसे गोपी लोग भगवान को कामना ले से इंद्रिय तृप्ति के नहीं था उसे प्रेम का बा अपरंत और जो प्यार से उनको उन्होंने भजन किए। लेकिन ये भौतिक जगत से हम देखते हैं कि उन्होंने अंग संग लाभ के लिए ही ने भजन किए थे, लेकिन उसमें भगवान का सानिध्य तो प्राप्त हुआ किसी भी बहाना से। विषय विषम विष सतत कहीं न, ये विषय जो है विष का सदृश है। लेकिन महाजन का कहना क्या है, रसवर्ज विषय निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम रसवर्जम रसपर्शम परम दृष्टा नवतन्ते। यदि हमारे पास विषय है, हमारे पास धन संपद है, तो उसको हम कहाँ लगाएंगे, या भगवान का सेवा में, भक्त का सेवा में, कई सत संप्रदाय में बा सत कर्म में यदि लगाते हैं तो क्या होता है ना, वो विषय नहीं कहा जाता है, उसको विषय कह ले ता है भूल, अब गलती हो जाएगी, अपराध हो जाएगा। विषय 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 सतत तो खाइन, एक दिन नहीं दो दिन नहीं सारा जीवन भर खाइन। इसलिए यहाँ पर आज सोच में पड़ रहा है क्या ना, राजा ने पूछ रहा है अपना रानी निवास में पहुंचे और देखे कि पहले जैसे साज सरंजाम ठीक से नहीं है, सब बिखरा हुआ है एवं सबका मन पहले जैसे हस्तफुल्ल नहीं है और सभी आनंद में नहीं है, सब शोक साकन में डूबा हुआ है। इसलिए उन्होंने पूछ दिए कि सभी लोग समान भाव में प्रसन्न हो, क्योंकि वातावरण देख के उनको पता चल गया कि आज माहौल कोई खराब होने वाला है। इसलिए वातावरण से हमको पता चलता है कि कुछ और अपशकुन होने वाला है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि हम वो घर को उसी समय शो कर सकते हैं कि आध्यात्मिक वातावरण से यहाँ लगते हैं कि अतिरिक्त कार्य में लगता है, अर्थात भौतिक कार्य में तो सदैव चिंता से ग्रस्त रहता है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज ने उल्लेख करते हैं भुक्ति मुक्ति जावत प्रिया पिशाची हृदय वर्तते, भक्ति सिंधु में लेकिन कृष्णदास कविराज बताते हैं कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। उसका परिभाषा क्या है ना, जो भुक्ति जो भोगना चाहता है ये भौतिक विषय को, तो उनको कभी भी संतुष्टि नहीं मिल सकता है। प्रभुपाद ने उदाहरण दिए हैं कि जब तक हम आग में तेल हो वा घी डालते रहेंगे तब तक आग बुझेगा नहीं। ये भोगने का प्रवृत्ति ऐसे ही है, क्योंकि आप जजाति महाराज का प्रसंग में आप सुने हैं, उन्होंने भी एक रूपक प्रस्तुत किए हैं अपना बकरी का सदस्य तुलना किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना नवाजवान पुत्र से और आयु लेके कई हजार साल भोग किए, लेकिन अंतिम में क्या बोले, एक काम को धिक बोले, काम आदि नाम कति ना कति धापा दुर्निदेशाम। तूने जतुपति को भगवान से प्रार्थना करते कब ये विशेष सुख से हम उभर जाएंगे, तो जब तक हमारे भोग का वासना रहेगा तब तक हम संतुष्ट नहीं रह सकते। हाँ हम भक्ति भी कर रहा है, लेकिन जब तक जड़ उखाड़ के हम नहीं निकाल रहे तब तक ये विषय वासना का और रिएक्शन और एक्शन रहते रहेगा। भुक्ति मुक्ति इतना तक कि ये भौतिक बंधन से हम मुक्ति भी मिल जाए हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, लेकिन जब तक ना ये वासना जब तक हमारे रहेगा, सार्वभौम भट्टाचार्य एवं चैतन्य महाप्रभु का प्रसंग में है, जो भुक्ति मुक्ति का बात मुक्ति दाई भाग बोले तो उसमें उन्होंने बोले कि नहीं भक्ति दाई भाग बोल दिए, क्योंकि मुक्ति की आशा तक जब तक हमारे कामना है तब तक हमारे भक्ति प्राप्त नहीं हो सकता। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सत्कली असंत, अष्ट सिद्धि जो कि अणिमा लघिमा प्राप्ति काम बसायता है, हम एक जगह में बैठ के हाथ बढ़ा देंगे कि प्राप्ति हो दूसरा जगह से सामान आ जाएगा, हम हल्का से हल्का हो जाएंगे, छोटा से छोटा आ जाएंगे, एक भारी से भारी हो जाएंगे, लेकिन प्रक्रम में दिखाई देंगे अन्य ग्रह को हम नष्ट कर सकते हैं ये अष्ट सिद्धि का माध्यम से, लेकिन तब भी क्या होगा ना, सभी अशांत है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलीय शांत, निष्काम कृष्ण भक्त अतैव शांत। तो इससे पता चलता है कि कौन निष्काम है। अशांत मतलब कि हम कितना भी तपस्या कर रहे ये नवदा भक्ति को आचरण कर रहे हैं लेकिन मन में हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसका मुख्य कारण क्या है ना, अतपुंभी दीज श्रेष्ठ वन्याश्रम विभाग सुनिश्चित धर्म से संसिधि हरितूषण। ये हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए विषय वासना को हम उपभोग में लाता है एवं हमारे इंद्रिय तृप्ति के हम अपना शोषण के लिए हम इसको उपयोग करते हैं, इसीलिए हमको संतुष्ट नहीं मिल रहा है। इसीलिए वन्याश्रम व्यवस्था के अनुसार कोई भी आश्रम में रहे कोई भी वर्ण में रहे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अतपुंभी द्विज श्रेष्ठ वन्याश्रमस सुनिश्चित धर्म से संसिधि हरितूषण। चारि वर्णाश्रम यदि कृष्ण नाई बजे सुधर्म करिया से रौरवे पड़ी बजे, हम वन्याश्रम व्यवस्था को अपना लिए चार वर्णाश्रम को वानप्रस्थ संन्यास ब्रह्मचारी गृहस्थ ये सब आश्रम को अपना लिए, उसका अनुसार हम वन्याश्रम का धर्म को का भी पालन किए, लेकिन भगवान का संतोष के लिए नहीं हुआ। तो क्या हुआ ना, एकांत के हर भक्ति उत्पाद तैव कल्पते, ये क्या विधि विधान हम शास्त्र का अनुसार पालन नहीं किया, इसलिए क्या हुआ उत्पाद तैव वो विभ्राट सृष्टि हुआ। इसलिए महाजन का कहना है कि निष्काम कृष्ण भक्त अतएव शांत। इसे ब्रह्म संहिता में ही नहीं हमारे भगवत गीता में उसका परिभाषा देते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सूचति न कांकति सम सर्वे से उभूषति मद भक्ति लवते पराम। उसका परिभाषा यह है कि भक्त का लक्षण ही है। भगवत गीता में 12 अध्याय में उसमें वर्णन है, वो ना सुस्ता है ना दुखी होता है, ना हर्ष को प्रकट करता है ना विमर्श होता है। कोई उसका पास से खो जाता है कि वह मिल जाता है मैं भी बराबर रहता है। इसीलिए ये परिभाषा है कि ये उच्च कोटि का भक्त का ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांकती, वो कभी भी वो सोचता भी नहीं और आकांक्षा भी करता नहीं। और क्या करता है, सम सर्वेशु भूतेशु मद्भक्ति लभते पराम, सभी में उन्होंने भगवान का दर्शन करते हैं। इसलिए महाजान का कहना क्या है, सभी जगह में उन्होंने सभी भगवान का उपस्थिति अनुभव करते हैं। उसका प्रमाण क्या है, क्योंकि ये उत्तम कोटि का जो भक्त है उसका परिभाषा है शास्त्र युक्त निपुण सुड़ा दृढ़ भक्ति जार सही तो उत्तम भक्त तारा ही संसार। भगवान का तारण करने का उनका क्षमता रहता है कि जिन्होंने भगवान का नाम में एवं भगवान में दृढ़ भक्ति रहता है। शास्त्र युक्ति नहीं जानी सेकंड निष्ठा जनम, शास्त्र युक्ति में इतना निपुण नहीं है वो उनका से कनिष्ठ जनम, क्रमे क्रमे तेव भक्त हईबे उत्तम, एक ही नहीं से हमेशा कनिष्ठ स्तर में रहेंगे। इसलिए प्रभुपाद इन्हें बताते हैं कि घर को हम उसी दिन शुभ कर सकते हैं। हम एकादशी में एक भजन गाते हैं, जेनी जेदी ने गृह भजन देखी गृह ते गोलक भाए। तो हमारे जो भक्त लोग तो भजन करते हैं गृह में हर दिन, लेकिन उसको हम दृढ़ता सहित करना चाहिए, क्योंकि हमारे सोई का नक्का बराबर आसक्ति है। जैसे मैं पहले बताया कि भुक्ति मुक्ति प्रिया जावत पिशाची हृदय बताते, ये पिशाची का बराबर कहा जाता है भुक्ति मुक्ति। प्रतिष्ठा आदि प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा अभिमानम सुरापानम त्रय तेजत हरि भजत, हमारे पास हम तो भजन कर रहा है लेकिन बाबा के लिए हम कोई प्रशंसा मिल जाए कोई प्रतिष्ठा मिल जाए तो हमारे भक्ति सुदृढ़ नहीं होगा। इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु हमको सावधान करा देता है कि भक्ति मूर्ति प्रिया जबस पिशाची हृदय वर्तते, उसको समूल नष्ट करना पड़ेगा। जैसे दुर्योधन ने बतला दिए कि हम बिना जिद्द में सुई का नक का बराबर हम मैं दिन दे नहीं सकता, ये सुई का नक का बराबर यदि हमारा आ सकती है तो भक्ति मान लीजिए पिशाची हमारा निकल जा रहा है। इसीलिए हमको दृढ़ता सहकार ये नवदा भक्ति का आचरण करना चाहिए। और इसे भी सावधान है, जैसे अलंकारिक ढंग से ये कथा का प्रस्तुत करते हैं इसीलिए बारंबार उसी ही कथा को ही आर दोहरा जाता है। अवस्तम मुखद गिरणम पूत हरिकथामृतम श्रवण नैव कर्तव्यम सर्पचिष्ट जथापय, आपका भक्ति जो आज परिपक्व अवस्था में है लेकिन यदि आर दूध का बर्तन में सर्प और चोट मार दिया तो आपका अमृत तो नष्ट हो जाएगा, तो विषय में परिणत हो जाएगा। इसलिए इसका प्रति भी सावधान होना चाहिए। और प्रभुपाद यहां बताते हैं कि यदि कोई कृष्ण के विषय में निरंतर सोचता है, उनकी सेवा करने का विचार करता है, उन्हें आज्ञा का पालन करने कामना करता है, तो समझना चाहिए कि उसने अपनी बुद्धि की अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। जब हम निरंतर कैसे भगवान का आरा सेवा करता है, इसलिए भक्ति पद्म पुराण में बताता है कि अत कृष्ण श्री कृष्ण नाबादी नाभेवत ग्रामे अंद्रे सेवन मिख ही जिहाद स्वयं स्फुरत। जब तक हम सेवा निष्ठा सहकार नहीं करते तब तक हमारे अनुभूति नहीं होगा भगवान का, क्योंकि अत श्री कृष्ण नाम आदि भगवान का जो दिव्य नाम एवं उनका रूप एवं गुण पथ प्रदर्शक का जो गुरु का अधीन में हम जब तक बस साधु का मार्गदर्शन में नहीं आते तब तक इसका अनुभूति नहीं हो सकता। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर और भी कोई व्याख्या देते हैं और प्रभुपाद बताते हैं कि किंतु उच्च रस को अनुभव द्वारा ऐसे व्यापार का त्याग कर बहुत चेतना बुद्धि युग में स्थिर हो जाता है। जब हमारे बुद्धि युग प्रखर हो जाता है, विषय से निवृत्त हो जाता है, तब तो क्या होता है ना, भगवान हमको तेसाम सतत युक्ता नाम भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि युगम तम जैन माम पजान्ति ते। हम जब सतत भगवान का भजन करते हैं एवं निरंतर स्मरण करते हैं, नाम का कीर्तन करते हैं, बुद्धिमंत परस्पर करते हैं, तब क्या होता है भगवान ये बुद्धि युग प्रदान करते हैं। अरे बुद्धि युग मतलब प्रभुपाद यह व्याख्या करते हैं भक्ति युग, केवल भक्तिर बस चैतन्य गुचा है, बिना भक्ति में ये चैतन्य महाप्रभु का भगवान कृष्ण को बस नहीं कर सकता। तो आगे आप सुनेंगे कि पुरंजन ने अपना रानीवास में जाके देखते हैं और आखेट का आखेट से आके थके मंदे हैं एवं उन्होंने और भी कोई प्रकार का प्रशंसा प्रस्तुत करेंगे। हरे कृष्ण, कोई किसका प्रश्न है, टीका टिप्पणी? श्रीमद भागवतम की, समवेत भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे शील प्रभुपाद की।